अचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचालं अंघयति गिरिं यत्कृपा त्वमहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमाधवम्। हरे कृष्ण। तो मैं सभी भक्तों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इस शुभ तिथि पे श्यामानंद प्रभु के तिरोभाव तिथि के इस शुभ अवसर पर मेरे जैसे एक अधम व्यक्ति को भगवान और उनके शुद्ध भक्तों का गुणगान करने का मौका दिया। तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा भूल त्रुटि हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरे को तीन विषय के ऊपर बोलने के लिए आग्रह किया गया है। तो परसों हम लोग मनाए थे चिड़ा दही फेस्टिवल, तो उसके बारे में कुछ बोलने के लिए बोला गया है। फिर हम लोग मनाए कल श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा उत्सव, और आज उसके बारे में, और फिर श्यामानंद प्रभु का आज तिरोभाव तिथि है तो उनके विषय में बोलने के लिए, गुणगान करने के लिए मेरे को अनुरोध किया गया है, सेवा दिया है। तो समय बहुत कम है तो मैं संक्षिप्त में ये सब बोलने का कोशिश करूँगा। आप लोगों का अपना कृपा दृष्टि मेरे ऊपर दीजिए ताकि मैं भक्तों और भगवान और उनके भक्तों के गुणगान में कुछ दो शब्द बोल पाऊँ। तो 500 साल पूर्व बंगाल में पानीहाटी जो गांव है, अभी तो गांव नहीं है, अभी शहर है, कोलकाता के बाजू में ही है, कोलकाता से 20 मिनट आधा घंटा लगता है। तो उस पानीहाटी गांव में ये दही चिरा उत्सव मनाया गया था। तो ये दही चिरा उत्सव का और एक नाम है, पता है आप लोगों को क्या नाम है दही चिरा फेस्टिवल का? और एक नाम है, कोई बता सकते हैं? एनीबडी? तो इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम यह है दंड महोत्सव बोलते हैं। तो आज से 500 साल पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पर अपने लीला कर रहे थे, तो तब रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि बंगाल में आदिशप्त ग्राम में थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो बाद में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े पार्षद बने और हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत बड़े आचार्य बने, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन के श्री चैतन्य महाप्रभु के पास श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए शांतिपुर आए थे। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा को प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये तय किया था कि मैं अपना जीवन संपूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा में समर्पण कर दूंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी को बताएं कि बानरों के जैसे वैराग्य यानी कि मर्कट वैराग्य मत करो, अपने हृदय के अंदर वैराग्य को रखो और बाहरी दृष्टिकोण से एकदम अच्छा बिजनेसमैन के जैसा बिजनेस करो। इसको इंग्लिश में बोलता है पाउंड सीलिंग मैन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के इस निर्देश को पालन करते हुए घर में आए। घर में आके एक साल बहुत अच्छे तरीके से बाहरी दृष्टिकोण से बिजनेस किए और अंदर वैराग्य को कल्टीवेट करते रहे। इन एक साल बाद रघुनाथ के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु को पूरी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में योगदान करने का इच्छा बहुत तीव्र हो गया और एक दिन घर से भाग गए। तो उनके पिताश्री, जो कि बहुत बड़े जमींदार थे, तो उनके पिताश्री अपने जो भी नौकर चाकर थे, जो भी गार्ड्स थे, उनको भेज दिए और वो सब मिलके रघुनाथ को पकड़ के लेके आए। फिर कई बार ऐसे अटेम्प्ट रघुनाथ कर रहे थे भाग जाने के लिए घर से। तो इसके ऊपर, रघुनाथ के इस एटीट्यूड के ऊपर उनके जो मदर थे वो बहुत क्रोधित हो गए। तो उनके मदर बोले, पुत्र बातुल होइल यहाँ राखो हो बांधिया, ये हमारा जो लड़का है एकदम पागल हो गया है, उसको भी बांध दो रस्सी से। तो ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताश्री एक बहुत सुंदर कमेंट की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताश्री बोले कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम एसब बांधिते नारी लेक जार मन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताश्री क्या कहें, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बिजनेस और उनके फादर के जो जमींदारी थे तो बहुत ऐश्वर्य से भरपूर थे। उस दिनों में 2000 गोल्ड कॉइन के जैसे उनके इनकम था। तो इंद्र सम ऐश्वर्य और रघुनाथ दास गोस्वामी के जो वाइफ थे एकदम अप्सरा के जैसे थे। तो उनके पिताश्री बोले कि ये दोनों चीज जिसको बांध नहीं पा रहा है, ऐसा बांधी ते नारी लेख जार मानो, तो उसको हम रस्सी से क्या बांधेंगे। क्यों, क्या हुआ? तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताश्री ने कहा, चैतन्य चंद्रेर कृपा होया छे यहारे, चैतन्य चंद्रेर बातुल के रखिते पारे। तो अरे, इनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ है और जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के पागलपन का भूत सवार हो गया है उसको कौन रख सकता है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी को खबर आया कि इस पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ विराजमान हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय पानीहाटी गांव में आकर जब नित्यानंद प्रभु गंगा के तट पे बैठे हुए थे अपने पार्षदों के साथ, तो चैतन्य चरितामृत में अंतलीला में 6 चैप्टर में वर्णन है, गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार उपरे बसियाछेन जेन कोटि सूर्योदय करे। तो नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं गंगा के तट पे वृक्ष के नीचे, एक पिंडर ऊपर है, एक वैदिक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि कैसे जैसे नित्यानंद प्रभु जैसे नित्यानंद प्रभु बहुत सारे सूर्य का उदय कर रहे हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का दर्शन करके दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और उस समय नित्यानंद प्रभु के पार्षद लोग बोले कि प्रभु यहाँ पे रघुनाथ आके आपको दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु बोले, सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजितोर कोरिमु दंडन। तो नित्यानंद प्रभु बोले के ओ थीफ, हे चोर, आज तुम मेरे को दर्शन दे रहे हो, तुम इधर आओ मेरे पास, मैं तुमको दंडित करूंगा। तो अभी तो ये बहुत गुह्य बात है कि नित्यानंद प्रभु के पास आए हैं, दूर से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और बोल रहे हैं कि थीफ, चोर। तो क्यों चोर बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, ये समझना बहुत जरूरी है। और नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि आज मैं तुमको दंडित करूंगा। तो क्यों चोर बोले नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ बार बार प्रयत्न कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सरेंडर करने के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास डायरेक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान की कृपा हमें गुरु के बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु है आदि गुरु, जो कि स्वयं बलराम जी हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सोची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताई। तो नित्यानंद प्रभु वही बलराम जी हैं जो कि आदि गुरु हैं, और नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना गौरंग महाप्रभु के कृपा को प्राप्त करना नामुमकिन है। और रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के कृपा को बिना प्राप्त किए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करना चाहते थे। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु अपने इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कह के पुकार, और फिर रघुनाथ को अपने पास बुलाकर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण मस्तक पर अपने चरण कमल रख दिए और पनिशमेंट दिए, पनिशमेंट के हिंदी दंड दिए। तो क्या दंड दिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो बहुत अमीर घर के लड़का था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिए कि यहाँ पे उपस्थित सारे भक्तों को, सारे वैष्णवस को तुम चीरा और दही खिलाओ, चीरा और दही फीस्ट खिलाओ। तो देखिए, तो चीरा और दही बंगाल में हर घर में उस समय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। क्योंकि पहले तो सबके घर में लगभग गाय थे, गाय होते थे, और गाय होते थे मतलब दूध थे, दही थे, मक्खन थे। और चूड़ा तो बंगाल में तो बहुत राइस का खेती होता है, तो चूड़ा भी बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो बहुत ही सहज उपलब्ध। ये दोनों चीज़ों को देखें, रघुनाथ दास गोस्वामी को सारे भक्तों को खिलाने के लिए नित्यानंद प्रभु ने ये दंड दिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस दंड को स्वीकार करते हुए सारे वैष्णवस के सेवा के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सात पात्र मिट्टी का, बहुत बड़े बड़े सात पात्रों का इंतजाम किए, और उसमें सारे अपने लोगों को भेजकर दूध, दही, चीड़ा, घना दूध, बनाना, ये सब मंगवाए। और ये जो सारे बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन थे, तो उसमें कुछ बर्तनों में दही, कुछ बर्तनों में गरम दूध के साथ चीड़ा को भिगोए, कुछ बर्तनों में दही के साथ चूड़ा को भिगोए, और कुछ बर्तनों में जो घना दूध है, कॉन्डेंस्ड मिल्क, उस कॉन्डेंस्ड मिल्क के साथ चूड़ा को भिगोए। तो ऐसे करके, और चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि कॉन्डेंस्ड मिल्क और उसमें शुगर, कैम्फर, बनाना, स्पेशली चापा कोला, इट इज मेंशन्ड इन चैतन्य चरितमृत, जो छोटा छोटा येलो कलर का केला होता है जो बहुत मीठा होता है, तो उसके साथ पूरा इंतजाम किए। और फिर सभी भक्तों को वो भीग जाने के बाद सभी भक्तों को दो दो करके पात्र दिए मिक्स का, ये चीड़ा के मिक्स का, एक पात्र में दूध, सॉरी, एक पात्र में वो जो घना दूध और दूध का बना हुआ चीरा, उस दूध के, दूध में भिगा हुआ चीरे को एक पात्र में, और एक पात्र में दही के साथ जो भिगोया हुआ है उसको सारे भक्तों को एक दो दो करके पात्र दिए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो नित्यानंद प्रभु के जो बहुत नजदीक के पार्षद लोग थे, जो नित्यानंद प्रभु के साथ बैठे हुए थे गंगा के तट पे, तो जो नित्यानंद प्रभु के आसपास बैठ पाए उधर ही वो लोग लेने लगे, जो नित्यानंद प्रभु के आसपास नहीं बैठ पाए वो गंगा के तट पे जाके दो दो मटका लेके बैठ गए। और कुछ लोग जो गंगा के तट पे भी, जिनको जगह नहीं मिला, वो लोग गंगा में हाफ अपने ना, क्या बोलते हैं इसको, चेस्ट चेस्ट तक डूब गए, और दो पात्र लेके, दो मटका लेके ना, दही चीड़ा और घना दूध चीड़ा का आस्वादन कर रहे थे। और नित्यानंद तो, और जब ये फेस्टिवल जब चालू हुआ तब बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े बड़े धार्मिक लोग उधर आने लगे, और सबको बांटा गया ये दही चीड़ा, दूध चीड़ा। और उस समय नित्यानंद प्रभु जब इसका रस आस्वादन कर रहे थे, तब उस समय राघव पंडित, जिनका राघव पंडित का हाउस अभी भी है पानीहाटी में, आप आएंगे तो देख पाएंगे, तो राघव पंडित वहां पे पहुंच गए और नित्यानंद प्रभु को बोलने लगे, अरे आपके लिए मैंने इतना कुछ कुकिंग किया है और आप इधर बैठ के ऐसे फीस्ट मना रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोले, गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे, आमी सुख पाई एई पुलीन भजन रंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि अरे मैं तो ना, मैं गोप जाति के हूं, मैं तो काउहर्ड, इंग्लिश में काउहर्ड बॉयज के, मैं तो परंपरा में आता हूं, और मेरे को ऐसे ही इस गोप सखाओं के साथ मिलके नदी के तट पे ऐसे पिकनिक मनाने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इधर अभी एंजॉय कर रहा हूं, और इवनिंग में मैं तुम्हारे घर में आके तुम जो बनाए बनाए हो सब खा लूंगा। और नित्यानंद प्रभु जब ऐसे सारे भक्तों के यहाँ बीच में थे तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और श्री चैतन्य महाप्रभु उधर आ गए, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में थे। और नित्यानंद प्रभु ये दही चिड़े के कुछ ग्रास को लेके, मॉर्सल को लेके चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे थे और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे थे। तो ऐसे दोनों के बीच में आदान प्रदान चल रहा था, तो और सब देख रहे थे, सबके बीच में गुजरते हुए नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ ये पास टाइम कर रहे थे, लीला कर रहे थे। तो इसमें वर्णन है कि की कोड़िया बहराई यहा केहो नहीं जाने, महाप्रभुर दर्शन पाए कोनो भाग्यवाने। क्या हो रहा था, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो स्पेशल सोल्स थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु को देख पा रहे थे। बहुत गिने चुने सोल्स, आत्माएं महाप्रभु को देख पा रहे थे। तो ऐसे जब नित्यानंद प्रभु सबको क्या बोलने के लिए बोले, आज्ञा दिला हरी बोली करो हो भजन, हरी हरी ध्वनि उठी खोरी भरी लो भुवन। तो नित्यानंद प्रभु सबको बोले के सब बोलिए हरी 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 हरी। तो ऐसे हजारों हजारों भक्त तब गंगा के तट पे, तो नित्यानंद प्रभु के इंस्ट्रक्शन पर हरी ध्वनि देने लगे और इस हरी ध्वनि से पूरा त्रिभुवन भरने लगा। हरी हरी बोली वैष्णव कर ए भजन, पुलिन भजन सवार होइल स्मरण। और सब ये हरिध्वनि के साथ सारे भक्त लोग भोजन कर रहे थे चिड़ा दही, और सबको स्मरण हो रहा था कि जैसे कृष्ण और बलराम उनके साथ में हैं और यमुना के तट पे वो बैठे हुए हैं और यमुना के तट में कृष्ण और बलराम के साथ पिकनिक मना रहे हैं। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों के ऊपर कृपा किए। तो नित्यानंद प्रभु के कृपा को प्राप्त करके इस फेस्टिवल में रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के कृपा को प्राप्त करके ये फेस्टिवल के बाद अपने घर से भागने में 100% सक्सेसफुल रहे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों तक जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। श्री चिड़ा दही महा महोत्सव की, श्री दंड महा महोत्सव की, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सो कल था जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा, स्नान यात्रा फेस्टिवल। समय बहुत कम है तो मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। तो ये स्नान यात्रा फेस्टिवल जगन्नाथपुरी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है रथ यात्रा के बाद, बल्कि रथ यात्रा का एक पार्ट है रथ यात्रा फेस्टिवल का भी ये स्नान यात्रा, क्योंकि रथ यात्रा फेस्टिवल चालू होता है अक्षय तृतीया से। अक्षय तृतीया से जगन्नाथ जी का रथ बनना चालू होता है। तो ये कहानी बहुत स्कंद पुराण में बहुत डिटेल्स में ये कहानी का वर्णन है कि कैसे जगन्नाथ जी का विग्रह महाराज इंद्रदुम्न ने प्रकट किए जगन्नाथपुरी में। तो कहानी तो बहुत बड़ा है तो वो तो कहना पॉसिबल नहीं है। तो जगन्नाथ जी का जब विग्रह प्रकट हो गए तो तब उस समय वहां पे नारद मुनि थे। तो नारद मुनि तो जगन्नाथ जी के इस विग्रह का दर्शन करके महाराज इंद्रदुम्न बहुत दुखित हो गए थे कि हाय हाय ये क्या हुआ, भगवान का ऐसे अपूर्ण रूप मेरे वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, इस अपूर्ण रूप रह गया। तो उस समय नारद मुनि प्रकट हुए और महाराज इंद्रदुम्न को बोले कि यही भगवान का कॉम्प्लीट रूप है, क्यों? क्योंकि जगन्नाथ का जो रूप है, ये रूप पूर्णतम रूप है, क्योंकि इस रूप में भगवान का अपने प्रियतम श्रीमती राधा रानी के प्रति जो प्रेम है उसका संपूर्ण प्रकाश इस विग्रह में होता है। इसलिए जगन्नाथ के विग्रह को बोला जाता है राधा, श्री राधा विरह विधुर। विग्रह बोला जाता है। तो तब नारद मुनि इंद्रदुम्न महाराज को समझाने पर इंद्रदुम्न महाराज थोड़ा प्रसन्न हुए और नारद मुनि फिर बोले कि मैं अभी ब्रह्मलोक में जा रहा हूं, मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने आपको मदद करने के लिए मेरे को भेजा। तो तब महाराज इंद्रदुम्न ने ये डिजायर, ये इच्छा प्रकट किए कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये दारु ब्रह्म विग्रह का स्थापना करेंगे। तो इसलिए नारद मुनि के साथ इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मलोक में गए। तो ब्रह्मा जी कुछ बिजी थे अपने साधना में, पूजा अर्चा में, तो कुछ समय वेट किए और फिर ब्रह्मा जी बाहर आए और आने का कारण पूछा तो महाराज इंद्रदुम्न इनवाइट किए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी महाराज इंद्रदुम्न के रिक्वेस्ट पर इस धराधाम पर आए। तो तब हजारों साल बीत चुका था जब महाराज इंद्रदुम्न ब्रह्मा जी को, नारद मुनि को लेके पूरी धाम में प्रकट हुए। और उस समय ये जो मंदिर जो महाराज इंद्रदुम्न बनवाए थे, मंदिर भी रेत के अंदर चले गए, बालू के अंदर चले गए। तो तब समय का राजा था गल माधव। तो गल माधव उस समय एक बार घोड़े के ऊपर जा रहे थे और घोड़ा गिर गया, मंदिर नीचे था और मंदिर के शिखर से टच होके घोड़ा गिर गया। और फिर ये गल माधव ने इन्वेंट किया कि यहाँ पे आविष्कार किए कि यहाँ पे मंदिर है, खुदाई करके मंदिर निकाले। और वो ये मंदिर अपना खुद का मान रहा था। तो तब इंद्रदुम्न महाराज ब्रह्मा जी को लेके आए और इंद्रदुम्न महाराज और गल माधव के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया। इंद्रदुम्न महाराज बोले, कह रहे ये मंदिर मैंने बनाया है, मेरा है, डिटीज। गल माधव बोले, अरे मेरे राज्य में आप कहां से आके टपक पड़े। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, मतलब इस द्वंद का समाधान कौन किए? काक भुशुंडी ने किए। तो काक भुशुंडी चिरंजीवी हैं, जैसे के हनुमान जी हैं चिरंजीवी, जो कि अमर हैं। तो सर काक भुशुंडी भी अमर हैं। तो काक भुशुंडी ने अपना सिद्धांत दिया और महाराज इंद्रदुम्न के पोजीशन को स्थापना किया। फिर महाराज इंद्रदुम्न के और गल माधव के रिक्वेस्ट में ब्रह्मा जी ने भगवान का स्थापना किया। इस स्नान पूर्णिमा के दिन में भगवान का अभिषेक करके बहुत सहस्र कलश से भगवान का अभिषेक करके भगवान का स्थापना किया। इसलिए इस स्नान यात्रा के दिन को भगवान श्री जगन्नाथ जी का बर्थडे यानी कि जन्मदिन, आविर्भाव तिथि बोला जाता है। तो जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर में दक्षिण दिशा में एक सोने का कुआं है और उसमें इस आषाढ़ मास के दसवीं तिथि को सारे तीर्थों का पानी उस कुएं के पानी में आ जाता है भगवान श्री जगन्नाथ का सेवा के लिए। और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का 108 कलश से ये पानी निकल के अभिषेक होता है। और अभिषेक के बाद जगन्नाथ जी का क्या हो जाता है, इतना सर इतना नहाने के बाद बुखार आ जाता है है ना। तो वास्तव में बुखार आता है। हमारे इस्कॉन के एक भक्त जो द्वैतपति पांडाज हैं जगन्नाथपुरी में, उनके साथ अच्छा रिलेशन है, तो उनके साथ जाके जगन्नाथ जी के विग्रह को टच करके देखे थे और बहुत हॉट था जगन्नाथ जी का बॉडी, ये सच्ची घटना है। और 15 दिन बाद जाके फिर से टच किए तो एकदम जगन्नाथ जी कूल थे। तो ये जो बुखार के लीला जगन्नाथ जी करते हैं, इसके पीछे भी और एक कारण है। क्या कारण है कि पूरे साल दिन रात जगन्नाथ जी दुनिया के लोगों को, फिर रात में देवी देवताओं को दर्शन देने में बहुत व्यस्त रहते हैं। तो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने होम मिनिस्टर को थोड़ा टाइम देने में थोड़ा कमी हो जाता है। ये होम मिनिस्टर को थोड़ा टाइम देने में कमी हो जाता है तो थोड़ा गर्म हो जाता है मामला। जो गृहस्थ लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी अच्छे से नहा धोने के बाद बाहर में नो एंट्री बोर्ड मार देते हैं कि अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, अभी मेरा टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर लक्ष्मी जी है। तो इसीलिए इस समय को अनावसर काल बोलते हैं, ये जो 15 दिन है नेत्रोत्सव तक, नेत्रोत्सव के पहले तक, जिसके उपरांत रथ यात्रा होता है। तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ टाइम बिताते हैं और जगन्नाथ जी का सेवा इस समय द्वैतपति पांडाज करते हैं। ये द्वैतपति पांडाज, ये इनका साल में ये स्नान यात्रा से लेकर पूरा रथ यात्रा उल्टा रथ तक चलता है और सारा सेवा ये द्वैतपति पांडाज करते हैं। और ये द्वैतपति पांडाज ये सवर राज विश्वावसु के लिनियत से आते हैं। ये सवर राज विश्वावसु नील माधव का उपासना करते थे, जिस नील माधव को, जिस नील माधव के दर्शन के लिए महाराज इंद्रदुम्न ने अपना ब्राह्मण विद्यापति को भेजे थे। तो विद्यापति सवरराज विश्वावसु के पुत्री ललिता के साथ शादी किए, तो उनके परंपरा से ये द्वैतपति पांडाज आते हैं। तो ये द्वैतपति पांडाज बहुत प्रिय हैं भगवान के, कि देखिए। तो इसीलिए जैसे कि हमारा जब तबीयत थोड़ा खराब होता है, थोड़ा हम प्राइवेट क्वार्टर में रहते हैं, तो वहाँ पे अपने जो खुद के चाहने वाले लोग होते हैं, केयर करने वाले लोग होते हैं, वो लोग रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये द्वैतपति पांडाज भी भगवान को उतना प्रिय हैं। तो इसीलिए इस स्पेशल समय में जो भगवान जब अपने निजी कमरा में खुद को बिजी रखते हैं, बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तब ये द्वैतपति पांडाज से सेवा लेते हैं। तो ये स्नान यात्रा कल हुआ और आज है श्यामानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि। अभी आप लोग तो वृंदावन में ही हैं, है ना आप लोगों को पता है श्यामानंद प्रभु के बारे में सब कुछ, श्याम सुंदर मंदिर है यहाँ पे। फिर भी मेरे खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए मैं कुछ श्यामानंद प्रभु के बारे में बोलना चाहूँगा। तो श्यामानंद प्रभु बंगाल के धारंदा गांव में आविर्भाव हुआ उनका। ये जो धारंदा गांव है, बहुत सारे जगह पे मैं देखा कि ये लिखा हुआ है कि ओडिशा में है बेसिकली। तो मैं कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले, मैं गया था ये खड़गपुर के, खड़गपुर जो टाउन है, खड़गपुर टाउन से 10 मिनट का डिस्टेंस है कार में, फोर व्हीलर में 10 मिनट का डिस्टेंस में है ये धारेंदा गांव, जहां पे श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। तो श्यामानंद प्रभु के पेरेंट्स जो पिताश्री थे कृष्णा मंडल, तो उनके माता पिता का श्यामानंद प्रभु के आविर्भाव से पहले बहुत सारे बच्चों को जन्म दिए जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए उनके फैमिली में बहुत दुख कष्ट था। और सबसे अंत में श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनका नाम रख दिया दुखी। तो श्यामानंद प्रभु छोटे से उम्र से वो शास्त्र को बहुत अच्छे तरीके से वो सुन के याद रख पाते थे, संस्कृत व्याकरण में बहुत पंडित हो गए थे, और कृष्ण के प्रति, कृष्ण भक्ति के प्रति, जो कि उनके उनके फादर से श्यामानंद प्रभु को उनके पिताश्री से प्राप्त हुआ, बहुत आकर्षक थे, बहुत भावमय हो जाते थे श्यामानंद प्रभु कृष्ण भक्ति के बारे में सुनकर, भगवान के भक्ति करके। तो श्यामानंद प्रभु खुद एक दिन बोले अपने पिताश्री को कि मैं बंगाल जाना चाहता हूं, मैं कालना जाना चाहता हूं, अंबिका कालना, तो उधर मेरे गुरु हृदय चैतन्य गोस्वामी हैं और उनके गुरु गौरीदास पंडित जी हैं, और उनके आश्रम में गौरनिताई स्वयं है। तो श्यामानंद प्रभु के ये बात सुनकर तो उनके पिताश्री बहुत चौंक गए कि कैसे ये छोटा लड़का को इतना कुछ पता है और अपने गुरु, अपना हृदय चैतन्य गोस्वामी को अपना गुरु बता रहा है। तो श्यामानंद प्रभु के बात सब कुछ सुनकर बोले तुम कैसे जाओगे? बोले कि अभी कुछ ही दिन में यहाँ के जो लोग हैं वो गंगा में नहाने के लिए जाएंगे उधर, तो फिर मैं उन लोग के साथ जाऊंगा। तो उनके पिताश्री ने उनको जाने का अनुमति दे दिया और श्यामानंद प्रभु कालना, जो कि वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है, कालना में गौर निताई के मंदिर में, आश्रम में, हृदय चैतन्य गोस्वामी और गौरीदास मंदिर के आश्रम में आ गए। और श्यामानंद प्रभु को देखकर हृदय चैतन्य गोस्वामी बताते हैं तुम कौन हो? तो बोले कि मेरा नाम है दुखी और मैं आपके सेवा के लिए इधर आया हूं, आपको, आप मेरे को अपना शरण में रख लीजिए। तो तब श्यामानंद प्रभु को उसी समय हृदय चैतन्य गोस्वामी ने उनको नाम दिया कृष्णदास, आपका नाम दुखी नहीं कृष्णदास है। तो कृष्णदास का हरिनाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा हुआ कुछ दिन बाद एक शुभ मुहूर्त में, और हृदय चैतन्य गोस्वामी के अंदर में आश्रम में सेवा करने लगे, और हृदय चैतन्य गोस्वामी का, अपने गुरु महाराज का दिल जीत लिए। फिर श्यामानंद प्रभु को हृदय चैतन्य गोस्वामी ने निर्देश दिया, दुखी कृष्णदास, कृष्णदास को निर्देश दिया कि तुम वृंदावन में जाओ और श्री जीव गोस्वामी के पास से तुम सारे शास्त्रों के बारे में शिक्षा लाभ करके वापस आओ। तो श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य गोस्वामी के निर्देश पे वृंदावन चले आए और जीव गोस्वामी के अंडर में समर्पण करके, जीव गोस्वामी के अंडर में शास्त्रों का अध्ययन किए, और श्यामानंद प्रभु को प्राप्त हुआ दो और महान वैष्णव आचार्यों का संग। कौन कौन? नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य गोस्वामी के शिष्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे, और और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। तो ये तीनों गुरु के शिष्य जीव गोस्वामी के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, इजोल ने जयप्रकाश स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये है इस्कॉन का मॉडल। तो इस्कॉन का मॉडल है, कोई भी किसी भी गुरु से दीक्षित हो सकता है और किसी भी गुरु के पास से शिक्षा ले सकता है। तो इस मॉडल को हम सुंदर तरीके से इस्कॉन में प्रयोग करेंगे तो इस्कॉन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के साथ श्यामानंद प्रभु का ट्रेनिंग चालू हुआ। श्यामानंद प्रभु को जीव गोस्वामी ने सेवा कुंज में हर दिन झाड़ू लगाने का सेवा दिया। कितना तुच्छ सेवा है, लेकिन ऐसी सेवा को बहुत केयरफुली श्यामानंद प्रभु करने लगे उस समय। अगेन कृष्णदास करने लगे, हर दिन सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे बहुत प्रसन्न से कि जीव गोस्वामी के निर्देश को पालन करने का मौका उनको प्राप्त हो रहा है। तो एक दिन झाड़ू मारते मारते श्यामानंद प्रभु को सेवा कुंज में एक पायल, एंकलेट्स, नूपुर, तो नूपुर प्राप्त हुआ, पायल प्राप्त हुआ। तो उस पायल को श्यामानंद कृष्णदास ने टच किया तो उनके शरीर में रोमांच कंप अश्रु होने लगे, एकदम पूरे शरीर में अष्टसात्विक विकार प्रकट होने लगे। तो श्यामानंद प्रभु फिर समझे कि कोई साधारण पायल नहीं है। तो उस समय तो राधा रानी के सखी जो कि विशाखा सखी थे, तो विशाखा सखी उस समय एक बूढ़ी के रूप में आए और कृष्णदास को बोले कि अरे तुमको इधर झाड़ू मारते हुए कुछ पायल प्राप्त हुआ क्या? बोले कि हाँ प्राप्त हुआ, तो वो पायल मेरी लड़की की है, तुम वो दे दो। तो बोले कि मैं खुद ये पायल अपने हाथों से आपके लड़की को देना चाहता हूँ। अभी विशाखा देवी तो काफी दुविधा में पड़ गए, ये तो अजीब चीज बोल रहा है। तो बोले कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, तो उनको जो ललिता कुंड है सेवा कुंज में, उस ललिता कुंड में स्नान कर डुबकी लगाने के लिए बोले। ललिता कुंड में डुबकी लगाने के बाद कृष्णदास को गोपी का शरीर प्राप्त हुआ और उस शरीर में ये बूढ़ी औरत एकदम सेवा कुंज के अंदर एक फॉरेस्ट में लेके गए, कुंज में, जहां पे स्वयं राधा रानी अपने सखियों के साथ बैठी हुई थी। और श्रीमती राधा रानी के पास इस कृष्णदास को लेके आए तो कृष्णदास पूरा भाव विभोर हो गए और श्रीमती राधा रानी को ये पायल कृष्णदास ने सौंपा और श्रीमती राधा रानी बहुत खुश होके इस पायल से उनके ललाट पर एक तिलक कर दिए। और राधा रानी का नाम है श्यामा। तो क्योंकि राधा रानी को बहुत आनंद कृष्णदास ने दिया, इसलिए राधा रानी ने उनको बोला आज से तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद और ये तिलक तुम्हारे ऊपर रहेगा। और राधा रानी ने अपने हृदय से श्याम सुंदर का एक सुंदर विग्रह प्रकट किए, जिस विग्रह का दर्शन हमें वृंदावन धाम में आज भी होता है। तो श्यामानंद प्रभु का तिलक चेंज हो गया और वापस लौट के आए और श्यामानंद प्रभु के तिलक देख के जीव गोस्वामी बोले कि अरे क्या हुआ, तिलक चेंज क्यों चेंज कर लिया, संप्रदाय चेंज क्यों कर लिया। तो जो कुछ भी डिटेल्स में हुआ, सब जो कुछ भी हुआ सब डिटेल्स में श्यामानंद प्रभु ने बताया और यह खबर कालना तक पहुंच गया कि कृष्णदास का तिलक चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया है। ये सुनकर तो हृदय चैतन्य बोले अरे क्या हो गया, जाके भी बचाना पड़ेगा मेरे शिष्य को। तो हृदय चैतन्य गोस्वामी पूरा अपना टीम लेके वृंदावन आ गए और श्यामानंद प्रभु को थोड़ा साइड करके लेके गए, बोले कि क्या हुआ बेटा, क्या किया, ये सब कुछ चेंज वेंज क्यों हो गया, ये तिलक मिटा हुआ अभी। तो श्यामानंद प्रभु कुछ भी भ्रमित नहीं हुए, कुछ भी चीज़ खराब नहीं लगा उनका कोई भी बात, वो मुस्कुरा रहे थे। और हृदय चैतन्य गोस्वामी ने बहुत कोशिश किए उस तिलक को मिटाने के लिए, जितने कोशिश की उस तिलक को मिटाने के लिए उतना वो तिलक चमकने लगे। फिर रात को हृदय चैतन्य गोस्वामी को सपने में राधा रानी आई और राधा रानी आके श्यामानंद प्रभु को हृदय चैतन्य गोस्वामी को सब कुछ बताएं। तो हृदय चैतन्य गोस्वामी बहुत आनंद महसूस किए अपने शिष्य के राधा रानी के इस कृपा को प्राप्त करने की इस पूरे कहानी पर, और श्यामानंद प्रभु को अपने हृदय से लगाए और बंगाल लौट गए। बंगाल लौट के आए श्यामानंद प्रभु अपने ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जीव गोस्वामी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य बुलॉक काट में सारे 6 गोस्वामियों का सारे किताब को लोड कर दिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पार्टी, संकीर्तन फर्स्ट संकीर्तन पार्टी, फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य ने प्रारंभ किया। तो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, उन्होंने लिखने का काम किया और श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य ने उनके लिखे हुए ग्रंथ को प्रचार करने का प्रयत्न किया। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, इन लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु का कंपाइलिंग एनर्जी बोला जाता है और श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को महाप्रभु का कृपा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करने का एनर्जी बताया जाता है। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेके प्रकट हुए और ये सारे आचार्य के डिजायर को पूर्ण कर दिया पूरे दुनिया में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्यामानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज श्यामानंद प्रभु का तिरोभाव तिथि है और श्यामानंद प्रभु के चरण कमल इधर विराजमान है। तो अभी हम लोग जे आनिलो प्रेम धन कीर्तन करेंगे। तो मैंने प्रयत्न किया जितने सरल तरीके से हिंदी में बताने का, तो मेरा भूल त्रुटि हो गया तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा श्यामानंद प्रभु से, ताकि श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में मैं कुछ सेवा कर पाऊँ उनकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।